का यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुरदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राव
नारायण 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 नारायण। देखो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा से संगोस्त कर्मणि। ये श्लोक है, इनमें चार पद है। हरेक श्लोक में चार पद होते हैं, कई विषम भी होते हैं, परंतु ज्यादा ऐसे होते हैं विषम और सम और अवसम, ऐसे श्लोक होते हैं। चारों चरण चार ही तरह के बिल्कुल नहीं मिलते, ऐसे श्लोक होते हैं। पहला और तीसरा एक होते हैं, चौथा और दूसरा एक होते हैं, ऐसे भी होते हैं। कभी गीता में ये पूर्वाध उत्तरार्ध दोनों दो तरह के होते हैं, ऐसे श्लोक है। चार चरण होते हैं, छप्पे में छह चरण होते हैं, एक प्रसंग में एक चरण होता है। ऐसे छंदों के कई भेद है, लाखों करोड़ों भेद है छंदों के। तो यहाँ जितने छंद है गीता में उनके चार चरण होते हैं, एक श्लोक है चार चरण। चाहे अनुष्टुप हो, त्रिष्टुप हो, जगती हो, और चाहे अपने दूसरे उपजाती इंद्र बज्रा उपेंद्र बज्रा ये हो, ये है अनुष्टुप छंद। कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल मा से संगोस्व कर्मणि। इसमें पहला और चौथा चरण एक है, तीजा दूजा और तीजा एक है। ये थोड़ा सुन ध्यान देकर, कर्मण्य एव अधिकार से अंत में कहा कि माते संगोस्तु अकर्मणि। कर्म करने में अधिकार है, कर्मों के त्याग में कभी अधिकार नहीं करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकार से माते संगोस्तु अकर्मणि। माँ फलेषु फलेषु कदाचन माँ फलेषु कदाचन तो माँ कर्म फल हेतु भू। कर्म करो फल मत चाहो, ये बात दो आई इसमें। तो कर्म करो उसमें अकर्मण्यता में संग नहीं होना चाहिए, कर्मों से रहित होने में आसक्ति प्रीति वो नहीं चाहिए। और फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है तो फल के हेतु भी मत बनो, ये अर्थ हुआ। आगे आने ख्याल में दोबारा कह गया, पहले चरण का चौथे चरण के साथ संबंध है, दूसरे चरण का तीसरे श्लोक तीसरे चरण के साथ संबंध है। कर्मण्येवाधिकार से कर्म करने में तेरा अधिकार है, माते संगोस्तु अकर्मणि। अकर्मण्यता में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें संग नहीं होना चाहिए। तस्मात असत सतत कार्य कर्म से मशीन की तरह निरंतर कर्तव्य कर्म करो, न करने में आसक्ति न हो। और फल में तुम्हारी आसक्ति नहीं हो, कभी नहीं हो, इस बात के फल के हेतु भी मत बनो। पहला चरण चरण है उस खास बात का रक्षा के लिए, चौथा चरण है ऐसा, दूसरा चरण है अनुष्ठान का, तीसरा चरण रक्षा करने का। ये चारों भेद है। तो कर्म करना चाहिए और कर्म से रहित नहीं होना चाहिए, और फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए परंतु फल के हेतु भी नहीं बनना चाहिए। ये खास अर्थ आया। अब आगे समझ में दिखता देख लो, नहीं आओ तो गीता देख समझ लो। तो ये बात बताई ऐसे करना चाहिए। कर्म नेवाधिकार कर्तव्य, कर्म करने में तेरा अधिकार है पर फल में तेरा अधिकार नहीं है। काम कर लो पर फल पा ही लो, हाथ की बात नहीं है। मिले ना भी मिले, अच्छा अभी नहीं मिले पीछे मिले। कर्मयोग की बात 18वें अध्याय के 12वें श्लोक और व्याख्या में खूब विस्तार से कही है, उसका थोड़ा मनन करो तो पता लगेगा। गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति गहरी है। कथा बात व्याख्यान विद्वानों के यहाँ भक्ति की मार्ग चलती है और ज्ञान मार्ग की चलती है, पर योग मार्ग नहीं चलता। योगो नष्ट परम तप, भगवान कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले योग लुप्त प्राय हो गया है, इसको जानने वाले बहुत कम रहे हैं, आज भी बहुत कम है। शेर जी ने प्रखंड ये बीड़ा उठाया है, इससे पहले नहीं। गंगाधर क्या अभी तिलक महाराज, तिलक ने कर्मयोग शास्त्र लिखा है परंतु कर्मयोग के गहरे तक पहुंचे हुए दिखते नहीं है। मेरे मन में आई थी, कई वर्षों नापास रहे थे, जल्दी की बात है, अब क्या करूंगी, मर गए जा दो बात करता था। मैं छोकरा मामूली, ये बड़े बड़े पंडित, मैं पूछता हूँ उनसे, उन्होंने कर्मयोग माना है तत्व ज्ञान के बाद, और गीता कहती है यह सांख्य प्राप्त थे स्थानों तद योग ही गम्य थे साधन, कर्मयोग को सांख्य योग को साधन माना। उन्होंने कहा सिद्ध होने के बाद कर्मयोग होता है, ये तिलक जी महाराज का कर्मयोग, तिलक का कर्मयोग और है, सेठों का कर्मयोग और है, मेरा कर्मयोग और है। कर्मयोग की व्याख्या अलग अलग है, फर्क है उसमें। तो हम साधक को कर्मयोग माने, साधन अवस्था में सिद्ध अवस्था में नाम कर्मयोग नहीं, उसका कर्म अकर्म होता है। कर्मयोग कैसे होगा, कर्म अकर्म हो जाते सब, कर्म कोई फल नहीं होता, कर्मयोग कैसे होगा, वो तो हो चुका। पतंजलि महाराज ने कर्मों को लिखा है कर्मा शुक्ला कृष्ण योगी नस्तिविद मित्रेषां, योगी के अशुक्ल अकृष्ण होते हैं और इतने शाम त्रिविद दूसरों का तीन तरह का होता है, शुक्ल कृष्ण और कृष्ण शुक्ल मिले हुए अनिष्टम इष्टम मिश्रण त्रिविधम कर्म न फलम, तीन तरह का फल होता है। इस श्लोक ने खूब व्याख्या की है, आप मनन करें, कृपा करें, कोई भाई बहनों में से बड़ी आपकी कृपा मानूंगा, बड़ा एहसान करोगे मेरे पर, बहुत ही कृपा करोगे, उसका मनन करो। कर्मयोग की चर्चा विशेष नहीं होती है, जानने वाले आदमी बहुत कम रह गए। मैंने कर्मयोग पर देखे वो लेख देखे हैं, ये स्पर्श ही नहीं करते, असली तत्व को स्पर्श ही नहीं करते। ऐसी ऐसी पुस्तकें लिख दी कर्मयोग की, परंतु इसकी गहरे अर्थ को नहीं पहुंचे। तो गहरे अर्थ में पहुंचाने के लिए मैंने कर्मनिवादी का श्लोक कहा है। तो फल मत चाहो और फल के हेतु भी मत बनो, और कर्म करो, अकर्मण्यता में मत फंसो, ये चार बात कही। ये बात बताई है, उसका अनुष्ठान कैसे करें, तो 48 बताई, योगस्थ कुल कर्माणी संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध सुमो भूत्वा समतुम योग उच्यते। ये अनुष्ठान करने की विधि है, कैसे अनुष्ठान करें हम, तो ये सिद्धांत बताया, अब अनुष्ठान बताते हैं। योगस्थ कुल कर्माणी, योग में स्थित रहते हुए कर्म करो। योग नाम किसका, समतुम योग उच्यते, उस समता में स्थित रहो। योग सन कर्माणि करो, योग में स्थित रहते हुए ही कर्म करो। तो योग में स्थित कैसे रहे, तो कहते संगम तत्वर सिद्ध सिद्ध समूह भूतवा, स्वाप्रत्यय उपद क्रिया है, मानो मुख्य क्रिया नहीं है, गौण क्रिया बीच में होने वाली है। भुक्त्वा पीत्वा व्रजति, तो व्रजति मुख्य है, भुक्त्वा पीत्वा ये आवांतर क्रिया है। ऐसे संगम त्यक्त्वा और सिद्ध सिद्धि भूत्वा कर्माणि कुरु। पर कैसे हुए कि समस्त योग सन योग क्या समत्वम योग उचते, अर्थ क्या हुआ कि आप कोई भी काम करो तो पहले समता में स्थित हो जाओ, मानो अपनी मान्यता में समता लाओ कि इस काम में हर्ष हो नहीं करना है, आपको भोजन करना है भोजन के लिए बैठो तो हमें भोजन करने का अधिकार है फल में नहीं, इसका फल क्या होगा, फल होते हैं दृष्ट अदृष्ट दो, एक दृष्ट फल होता है एक अदृष्ट फल होता है, दृष्ट फल है फल होता है तृप्ति ढाप गए, ये दृष्ट फल है, अदृष्ट वो न्याय से भोजन किया है कि अन्याय से किया है, दूसरे का हक मारा है कि अपना हक का किया है, वो अदृष्ट फल बनेगा, आपने न्याय किया ठीक किया तो अदृष्ट फल ठीक मिलेगा आपको, और कहीं अन्याय किया है तो अदृष्ट फल खराब होगा, तो फल दृष्ट और अदृष्ट दो तरह के होते हैं, फिर दो तरह का होते हैं कि प्राप्त एक अप्राप्त, अभी हमारे को फल मिल रहा है सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है ये फल मिला है, सो सुख दुख हमारे को मिल रहा है ये प्राप्त फल है, और अभी प्रारंभ का बाकी है कहाँ बुखार आएगा कहाँ नफा होगा ये अप्राप्त फल है, तो दृष्ट और अदृष्ट दो फल, एक प्राप्त और अप्राप्त फल, ये फल के भेद है, इसमें से दृष्ट फल पर भी आसक्ति मत रखो अदृष्ट फल की भी आसक्ति मत रखो, प्राप्त फल के साथ भी आसक्ति मत करो अप्राप्त फल की भी इच्छा मत करो, ये इसका अर्थ हुआ समता में स्थित होना, तो योगस्था सब योग में स्थित रहो समता में रहो, राग द्वेष हरख शोक न होए, भोजन करते हुए अगर राग हो गया उसमें तो आप समता नहीं रहेगी, और झल्ला उठे किसी घर से क्या किया ऐसा कैसे बना है कुछ नहीं तो समता नहीं रही, इसका अर्थ नहीं नहीं नमक कम है तो बन रही लोग, पर हृदय में कोई राग है देश अर्थ कुछ नहीं, नमक कम है भाई नमक दे दो तो कोई पाप नहीं लगेगा, तो राजी और नाराज लोग तो फंस जाओगे, ये तेज बात है, न प्रदेशित प्रेम प्राप्त है नो द्वेष प्राप्त प्रिय प्रिय को प्राप्त आवश्यक मत हो अप्रिय प्राप्त उद्दीन मत हो, इसका नाम है समता योगस्थ, तो योगस्थ होने के लिए क्या करे कि संगम त्यक आसक्ति का त्याग करो और सिद्ध सिद्धि स्वभूतवा, आसक्ति जो प्रियता है भोजन में मिष्टान मिल गए राजी हो गया, मिष्टान नहीं मिले नाराजी हो गए, अच्छा है भोजन अरे भाई यार खटाई तो है ही नहीं इसमें, ना कोई दूध दही लाए ना कोई छाछ में खटाई है ही नहीं कड़ी भी नहीं, चटनी तो बना दे रहे थोड़ी सी, वो योग नहीं होगा ये भोग होगा, योग नहीं होगा तो भोग होगा, भोग नहीं होगा तो योग होगा, भोग मत भोगो योग में सिद्ध रहो, तो संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्ध स्वभूत्वा भोजन निर्विघ्नता से हो गया तो वही आनंद, और ऐसा अंधर और वर्षा आई जैसे भोजन पूरा कर ही नहीं सके तो उसे झल्लाओ मत, ठीक किया तो राजी मत हो, ये राजी नाराजी है यही इंद्रिय से इंद्रिय त्यार से राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और न बस भागत से राग द्वेष के वशीभूत मत हो, कितनी कृपा की भगवान ने, राग द्वेष हो जाए तो घबराओ मत उनके वशीभूत काम मत करो, राग पूर्व तो ग्रहण करना द्वेष पूर्व त्याग करना ये मत करो, न द्वेष या कुशल कर्म अशु कुशल कर्म का त्याग है बड़ा द्वेष पूर्वक नहीं, उस कुशल नाम सदते कुशल कर्म करना है पर आसक्ति नहीं, ऐसे सावधान रहो राग द्वेष से ये तो जैसे परिपंथ साधक के लिए राग द्वेष ये शत्रु है, ये लुटे रहे हैं आपके दस्यु है चुराने वाले हैं लूटने वाले हैं, इनके वशीभूत न होकर के ये है सिद्धि सिद्धि समूभूत हो, सिद्धि हो जाए असिद्धि हो जाए निरोगता आ जाए रोग हो जाए तो ख्याल रखो सावधान हो जाओ, राजी नाराज मत हो, ये राजी और नाराजी ये खास बंधन है, खास बंधन है यहाँ, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये कब नहीं होगा? संगम त्यक्त्वा और सिद्ध सिद्धि समो भूत्वा योगस्थ कर्माणि कुरु, ये अर्थ होगा। आशिकता त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम हो करके योग में स्थित रहते हुए कर्म करो, ये है विधि कर्म करने की। हरेक विधि, भोजन करो तो यही करो, बात करो तो यही करो, सो तो यही करो, बैठो तो यही करो, किसी से मिलो तो यही, साथ में योग एकदम योग में स्थित रहना है। राग द्वेष नहीं करना, हर शोक नहीं करना है, करना नहीं है, हो जाए की बात नहीं है। साधक से हो जाता है, राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, हो जाता है। होने का दंड नहीं मिलेगा, करने का दंड मिलेगा, दंड बिना रह नहीं सकते। संसार में बहुत पाप पुण्य हो रहे हैं, हमें थोड़ा ही पाप दंड मिलेगा, हमसे मत हो जाए वो मिलेगा। इस बात से निर्लेप होकर के सिद्धि सिद्धि में सम होकर के आसक्ति का त्याग कर सम होकर के सम में स्थित रहते हुए कर्म करो। समत्वम योग उच्यते, योग की परिभाषा है समत्वम योग उच्यते। समता जितनी रहेगी उतना योग हो गया, किसी काम में भी आप समता रह गई उतना आपका योग हो गया, जितनी राग द्वेष विषमता रही उतना भोग हो गया। योग अपने में रहता है, भोग दूसरे में रहता है। दूसरी चीज मिलने से, दूसरी व्यक्ति मिलने से सुख होता है, भोग होगा साक्षात। और अपने में समता रहती है, सुख मिल जाए, दुख मिल जाए, मित्र मिल जाए, शत्रु मिल जाए, अनुकूल मिल जाए, प्रतिकूल मिल जाए, परिस्थिति तो आवेगी, अनुकूल भी आवेगी, प्रतिकूल भी आवेगी, पर उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। बद्रीनाथ ने जाना है तो बीच में रास्ता बहुत बढ़िया आ गया, छाया भी आ गई, सुगंधि भी आ गई, जंगल में फूल खिले हुए है, दृश्य भी बड़ा अच्छा है, तो वहां राजी नहीं होना। हमें तो बद्रीनाथ जाना है या बैठना थोड़ा ही है। और चढ़ाई आ गई, घाम तप रहा है, पसीना आ रहा है और मैला पड़ा है, दुर्गंधि आ रही, ऐसा रास्ता आ गया, हमें यहाँ ठहरना नहीं है। हमें क्या मतलब इससे, हमें तो रास्ता पार करना है। ऐसे संसार की अनुकूलता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए तो उसमें फंसना नहीं है। हमें अनुकूलता प्रतिकूलता वो समान समझे, आसक्ति का त्याग करके योग में स्थिर रहते हुए कर्म करो, सब काम करो, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना। इसमें ये नहीं है कि ये अनुष्ठान जप करो भजन ध्यान करो, ये बात नहीं है, कर्म ही हो गए। जो कर्म करो जो स्वतः आपको प्राप्त हो जाए, स्वाभाविक रसोई बनाओ तो उसमें ये काम करो, जल लाओ तो उसमें ये काम करो, सेवा कर दो उसमें यही काम करो, अरे भोजन में भी यही करो। ये विधि है, ये अनुष्ठान करने का तरीका है, कर्म योग को अपने में लाने का अनुष्ठान करने का तरीका। पहले दो चार बात, दो बात होते हैं, दो बात, कर्म में अधिकार है, अकर्मण्यता में नहीं है, फल में अधिकार नहीं है, फल के हेतु भी बनना नहीं है। ये तो सिद्धांत पकड़ो, और सिद्धांत पर समता रहे तो कर्म में अधिकार है, अकर्मण्यता में अधिकार नहीं है, फल में अधिकार नहीं है, फल का हेतु बनना नहीं है, ऐसी बात रहती है। समता में स्थित रह काम करो, ये है विधि कर्मयोग की। दूरे ने यवर कर्म बुद्धि योग धनंजय, ये बुद्धि योग है, समबुद्धि विशिष्टते बुद्धि योग है। बुद्धि योग, योग और बुद्धि, ये तीनों नाम इस प्रकरण में आए हैं। बुद्धि भी आया है, योग भी आया है, बुद्धि योग भी आया है, एक कर्म योग की वाचक है। कई बुद्धि को ज्ञान का वाचक मानते हैं टीकाकार, और तो मूल को देख रहे से बुद्धि योग। 18वें अध्याय में जब ज्ञान का वर्णन आया है, बुद्धि योग उपासित्य मत्स्य सत्तम हो, वहां जो कर्मयोग 56 से 66 बुद्धि योग का आश्रय लेकर मेरे मत्स्य हो गया, भक्ति का विशेष वर्णन है। तो ये बुद्धि स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, उस कहने स्थित प्रज्ञ है। ये स्थिर प्रज्ञ से का भाषा समाधि के रस्ते भी तुम प्रवासित विशेष के लिए उनकी अवस्था पूछी चार, तो एक और दो और छह और आठ, एक उपसंहार इतने श्लोक है। स्थित प्रज्ञ प्रकरण है, वो स्थित प्रज्ञ प्रज्ञा से हो गई। एक बीच में और आगे बात, मनुष्यों के जति हुई है कि मन स्थिर होना चाहिए। मन की स्थिरता का इतना महत्व नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता का है। बुद्धि की स्थिरता और मन की स्थिरता दो है। जैसे कोई पतिव्रता है तो उसका मन की चंचलता नहीं मिटती है, बुद्धि में स्थिरता है। एक धड़ी बस, एक मालिक है हमारा और कोई नहीं है। जैसे मीरा माँ ने कहा, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा वालू कोई। ये बुद्धि की स्थिरता है, मन की स्थिरता नहीं है। मन की चुप जाकर बैठे तो स्थिरता होती है मन की। बुद्धि में सिद्धांत के ऊपर स्थिरता होगी, एक उद्देश्य एक लक्ष्य बना लिया, बस उसी में ही दृढ़ रहे। कितनी आफत आवे दुख आवे तो उसमें धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखी आपत्ति में धीरज की धर्म की बात हो गई। ये धर्म है, कमी हो गई, धर्म है खास। ऐसा बनकर करो योग कर्मी संगम चक्त। तो ये विधि बताई। इस बुद्धि की प्रशंसा आगारी करते हैं कि बुद्धि योग तो जहाती है, बुद्धि युक्त पुरुष होता है वो जहाती है। उभय सुकृत पुण्य और पापों से दोनों से ऊंचा उठ जाता है बुद्धि योग। समता आ जाती है उसको, पाप और पुण्य नहीं लगते, दोनों अलग हो जाते हैं। ये जो मैंने कल कहा कि समत्वम योग उचते इस ऊपर कि कर्मण्येव अधिकार अस्ति, ऐसा भी सांख्य बुद्धि योग विद्या प्रत्यवाय स्वल्प धर्म से, इसका स्वल्प भी है वो धर्म कल्याण करने वाला है। कर्मियों का थोड़ा सा अनुष्ठान भी, तो इस अनुष्ठान में टीकाकार ऐसा ही लिखते हैं कि थोड़ा कर्मयोग का अनुष्ठान हो गया वो कर्म का अनुष्ठान बढ़ करके कल्याण कर देगा। भगवान बढ़ कर नहीं लिखा है, स्वयं भी ऐसे धर्म है, थोड़ा भी अनुष्ठान है धर्म बन रहित कर देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? थोड़ा अपना अनुष्ठान किया तो उसका फल सांसारिक नहीं होगा, भोग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, सुख मिल जाए, धन मिल जाए, ये फल नहीं होगा उसका। उसका फल केवल कल्याण ही होगा। जितनी आप में समता आ गई है, जिस किसी कर्म में समता आ गई, वो समता थोड़ी सी है, थोड़ी नहीं है। अरब खरब रुपये होते हैं उनका एक पैसा भी उसी का अंश है, अरब रुपयों का अंश है वो। ऐसे थोड़ा भी है कर्मियों का अनुष्ठान, वो भी आपके कल्याण ही करेगा और उसका फल हो नहीं सकता, फल देकर नष्ट हो जाए ऐसी बात नहीं है। ये बात खास चार बातें बताई कल कर्मियों की। तो उसमें इसका अर्थ ये है, ख्याल करो तो भाई, ख्याल नहीं किया आज भूसा के वो कर्मयोग थोड़ा अनुष्ठान बढ़ करके कल्याण कर देगा, बढ़ करके ये ठीक है। परंतु वास्तव अर्थ क्या है कि थोड़ा भी अनुष्ठान है उसका फल कल्याण के सिवाय दूसरा होगा ही नहीं, ये तात्पर्य है उसका। गीता साधक संधि में लिखने लगे तब ये अर्थ आया, व्याख्यान करते थे अर्थ नहीं आया, टीका में कहीं देखा नहीं है। ये ठीक बैठता है हमारे हृदय में और ठीक बैठती नहीं बात। पढ़ी है टीका, टीकाएं मैंने पढ़ी है, संस्कृत टीकाएं कहीं पढ़ी है, हिंदी की टीकाएं पढ़ी है। परंतु ये जो चार बातें हैं, कर्म बंधनों का नाश कर देगा और अभिक्रम का नाश नहीं होता। इसमें विघ्न लिखा है प्रतिवायु भी देते, इसमें है तनक महाराज ने विघ्न लिखा कि विघ्न नहीं होगा, विघ्न तो हो सकता है परंतु उल्टा फल नहीं हो सकता इसका, निष्काम कर्म का उल्टा फल नहीं होता। और थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है, मानो आपका कल्याण होगा इसमें ही वो भर्ती होगा, फल देने के विषय में भर्ती नहीं होगा। फल फल में देने तो फल, तो फल देकर नष्ट हो जाता है कर्म, और कर्म चाहिए वो तदर्थ ही हम सदित्या सत हो जाता है। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, सत अखंड रहता है, नित्य रहता है, कभी अभाव नहीं होता, ये उसका तात्पर्य है। अब ये है ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात, ये बुद्धि योग है, ये नाम है समता का। समता से करो कितना ही करो, यज्ञ करो, योग करो, बड़ बड़े सौ यज्ञ करो तब इंद्र बनता है, तो सौ यज्ञ कर दे अश्वमेध तो वो भी कर्म है, अवरम नेतृत्व है, बुद्धि योग से जो समता है उसी से दूर ही नहीं है। अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय, बुद्धि योग से दूर से ही अवर है, दूर से ही, दूर से अवर करने क्या मतलब हुआ, जैसे कंकर लावे कोई तो बोलो कंकर बना है पहाड़ क्या सामने बरोबर रखो, अरे बरोबर क्या कंकर बने, दूर से ही, दूर से ही दिखता है, तो छोटी मोटी अंगड़ी कौन है कि पास में रखो, हाँ ये बड़ी है, कुछ थोड़ा फर्क वैसे तो पास में रखे, फर्क महान आकाश पाताल का अंतर है, इस वजह दूर से ही निकल सके बिल्कुल, एक कंकर छोटा दे भरोसा कंकर में पहाड़ में क्या फर्क है, कि बरोबर रखो दोनों को, कंकर रखो पहाड़ में बरोबर रख दे, कहीं हम बड़ा कौन सा है, फिर दूर क्या, दूर नहीं है वरम कर्म, जितने कर्म शास्त्री होते हैं सबसे श्रेष्ठ बुद्धि योग, समत्वम योग से समता, राग द्वेष नहीं, हर शोक नहीं, जितने अंश में आपने राग द्वेष छोड़ दिया, जितने में हर शोक आपने छोड़ दिया, जितने अंश में आप सम रहे वो आपकी अक्षय पूंजी हो गई, आपको दिखे चाहे ना दिखे, पता लगे चाहे ना लगे, ऐसी बात वो बुद्धि योग पुरुष है, तो पूरे नहीं बुद्धि होगा, बुद्धो शरण मन में, भगवान के तुम दुबुद्धि की शरण जाओ, मन समता के शरण जाओ, कृपणा फल हेतु, फल के जो हेतु बनते हैं, माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल का हेतु मत बनो, तो कर्म के फल का हेतु क्या बनता है, कर्म को अपना मानना है, मैंने शुभ काम किया है, मेरा शुभ बन गया, मैंने किया है, अपनी ममता होगी तो कर्म फल हेतु हो जाओगे, युक्ता कर्म फल त्यक्त शांति माप्त होती नहीं सी, युक्ता काम कार्य न फल सकते निबद्ध थे, तो क्या चाहिए, कार्य न मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय अभी योगी न कर्म कुर्वन्ति संगम तत्व, केवल 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 मन ममता नहीं, काया के साथ ममता नहीं, इंद्रियों के साथ ममता नहीं, बुद्धि के साथ ममता नहीं, मन के साथ ममता नहीं, अपना पर नहीं है, ये भगवान के दीव है, इनके द्वारा कर्म करो, इस ममता करोगे तो फल के हेतु उड़ जाओगे, कि मेरे किया हुआ कर्म है उसे मन से किया, बुद्धि से किया, काया से किया, काय न मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय केवल ही, ये केवल सब क्यों होगा, काय न केवल न काय न केवल न मनसा केवलिया बुद्धिया केवल इंद्रिय, इस ममता नहीं चाहिए, ये कर्मयोग की बात है, सांख्य योग बताया तत्व सत्कर्तारम आत्मान केवल अंतुया, ये केवल दुबाया पर ये कर्मयोग में केवल है, ममता रहे वहाँ केवल शुद्ध आत्मा है, वो कर्ता नहीं है, उसको कर्ता मानता है दुर्मति है, ठीक नहीं मानता है, आत्मा में कर्ते तो नहीं है, शरीर स्थित कौन थे है? न करो थी मेरे पीछे सही में स्थित रहता है, कर्तापन उसमें है नहीं और आसक्ति लेप उसमें है नहीं, आत्मा शुद्ध निर्विकार है, ये उसको अनुभव करो, उसको जानो पहले, अनुभव करके फिर काम करो, तो उसमें भी समता है, इसमें भी समता है, भक्ति योग में ही समता है, सूर्य मित्रार्थ व्यासी में मध्यस्थ देश बंधु साधु सभी पापे संबुद्धि विशिष्ट थे, ये कर्मलोक में नमक है, फिर जैसे ध्यान चलता है उसमें भी समता है, ध्यान योग में भी, पर ध्यान योग है वो कर्म सापेक्ष है, ये सब कर्म निरपेक्ष है, कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग, ये कर्म निरपेक्ष, कर्म सच में नहीं है, कर्म का त्याग करो, अहंकार तक का त्याग, मैंपन का भी त्याग है, मैंपन अपना स्वरूप नहीं है, अहंकार इसी में भिन्ना प्रदेश था, ये आठ प्रकार भूमि आप अंग वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है, अगर आप परा प्रकृति, परा प्रकृति में आप अहम को साथ मिला लेते हो ये बंधन का कारण है, आप परा प्रकृति हो, ये अहंकार है तो अपरा प्रकृति है, जैसे मिट्टी का ढेला है ऐसे है अहम, अहम भी दृश्य है, अहम दृष्टा नहीं है, अहम भी अहम का भान होता है, जिस प्रकाश में वो प्रकाश आपका स्वरूप है, अहम आपका स्वरूप नहीं है, तो अहंकार अलग है, अहंकारम बलम दर्पण कामम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मल शांतो ब्रह्म हो जाए, ज्ञान योग में भी अहंकार रहते हैं, और सिद्धि असिद्धि में सम रहना कर्मयोग में भी है, और समता निर्ममो निरहंकार कर्मयोग में या बस्तर में 31वें श्लोक में, और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी 12वां श्लोक है। तो अहंकार रहित सब में होना पड़ेगा। अहंकार जड़ प्रकृति है, जैसे रुपयों के लोभ में फंसता है ऐसे अहंकार में वो बढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता मन से करता होता है, भोगता करना ही पड़ेगा, जन्म लेना ही पड़ेगा। कारण गुण संगो से सदा सदम सु अहंकार तीन तरह का होता है, सात्विक राजस तामस, पर तीनों का त्याग करना है। अपने अहंकार अपना स्वरूप नहीं है, मैं हूँ, ये जो है हूँ तो है सत्यानंद धन, और मैं हूँ शरीर, तो शरीर मैं नहीं हूँ, अहंकार मैं नहीं हूँ, अहंकार का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है। तो कर्म योग में भी होना चाहिए, ज्ञान योग में ही होना चाहिए, भक्ति योग में ही होना चाहिए, कोई सही योग हो निर्भुंग निरहंकार ये तो होना ही चाहिए। अहंकार नहीं, और बुद्धि का लेप नहीं होना चाहिए किसी में भी, आत्मा निर्लेप है, केवल है। और कर्मयोग से केवल इंद्रिया मन बुद्धि काया ये केवल केवल ये है, मन ममता नहीं, इसके साथ अपना संबंध नहीं है, ये तो संसार की चीज है। कर्मयोग में काया मन बुद्धि संसार की है, भक्ति योग में भगवान की है, और ज्ञान योग में प्रकृति की है। ये सब प्रकृति सा है, हमारा संबंध नहीं। प्रकृति पुरुषों पर धनादि भाग दो है, प्रकृति पुरुष ये सब प्रकृति का, प्रकृति है धातु रूप से, भगवान है मालिक रूप से, संसार है कार्य रूप से, ये कार्य है जो संसार के है। ये तो कर्म योगी सब संसार की मानता है, भक्ति योगी सब भगवान की मानता है, ज्ञान योगी केवल प्रकृति की मानता है, माया की प्रकृति है, हमारे मतलब नहीं से वो तथा रहता अपने स्वरूप में स्थित होता है। अरे भगवान का भक्त भगवान में स्थित होता है, और ये समता में स्थित होता है कर्म योगी, समता परमात्मा का स्वरूप, यही तेजिता स्वर्गो ये शांग सामने स्थितंग माना निर्दोष अंगे समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तस्मात ब्रह्मणी तेज स्थिता। मन समता में हो गया, मन में राग द्वेष नहीं है, तो उनकी स्थिति परमात्मा में है, ये पहचान है। परमात्मा में स्थिति नहीं होगी तो मन में समता नहीं आवेगी, तो परमात्मा में स्थिति होने पर मन में समता आ जाती है, और मन में समता रह जाए तो परमात्मा स्थिति हो जाती है, कोई यह कर लोगे समता में अगर मन स्थित रहेगा हर समता में तो परमात्मा स्थिति प्राप्ति हो ही जाएगी। तो समता में पहले स्थित और परमात्मा प्राप्ति होती है, ज्ञान योग में परमात्मा प्राप्ति होकर समता आती है स्वतः स्वाभाविक, ये पहले पीछे का फर्क है। यदा विनीतम से ध्यान में यदा विनीतम से तुम आत्मनिर्भावती से निष्प्रिय सर्व काम निष्प्रिय हो जाएगा। प्रदात यदा कामान कर्मयोग में कामनाओं का त्याग करता है, फिर आत्मनिर्भाव और निरुद्ध योग सेवा यथ सेवा आत्मना आत्मन आत्मा की परिस्थिति अपने आप में अपने आप को देख पा यदा विनीतम चित्तम आत्मे चित्त में आत्मा में स्थित होता है, ये कर्म सापेक्ष होता है, उसमें मन परमात्मा में स्थित होता है, उसके पर स्वयं होता है। कर्म योग में मन नहीं स्थित होता है, मन तो कार्य में रहता है, मन स्थित नहीं होता, मन का संबंध छोड़ता है। इस बात से प्रजाति यदा कामा फिर आत्मनी आत्मना तुष्ट, और वो ध्यान योग में यदा विनीतम चित्तम आत्मनी होती विश्व सर्व काम युक्त सदा यथा दीपो निवातस्तु नैंगतास्तु नैंगते सोपमा सुमता योगी ने युष्ट से युजमात्मा यत्र से युवात्मा प्रसन्न तुष्ट आया कर्म सापेक्ष में अब तुष्टि आया बीच में जाते हुए वो पहले ही हो जाता है। वो प्रजाति अदा कामान सब कामनाओं का त्याग, तो योगस्था कुरु कर्माणी संगम त्यक्त्वा फलम त्यक्त्वा, इनका त्याग करके समता में स्थित रहे तो समता प्राप्त नहीं हुई। अभी कर्मियों का साधन है समता रखता है, राग द्वेष हो जाए मिटाता है उसको, और समता में स्थित रहता है। अपना हर्षोग नहीं करना है, अब राजी नाराजी नहीं होना है, ऐसा सावधान रहकर करता है। तो कर्मयोग कर्मण्यवादी कर्म से ये तो बताया कर्मयोग का स्वरूप, योग से ये बताया कर्मयोग करने की विधि, हर एक कर्म का मैं ऐसा करूं। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो उठ लो। मेरे तो कहने लगने पर बहुत गीता सामने पड़ी, कैसे जाऊंगा इन विषय में? आपके शंका रही जो कर लो, जो संदेह रहा है फिर आगे चले। ठीक तरह से समझो इस विषय को, गहरे उतर करके समझो। समझना नहीं सबकी सबके लिए आवश्यकता है। ज्ञान योग में भी समझना है, कर्म योग में भी समझना है, भक्ति योग में है भगवान पर विश्वास, उसमें भी समझने की आवश्यकता है, पर उसमें भरोसे की आवश्यकता ज्यादा है। और ज्ञान योग कर्म योग में समझने की आवश्यकता ज्यादा है, समझ करके कर्म निरपेक्ष रहना है एकदम, उसमें कोई संबंध नहीं हमारा। कर्मयोग का संबंध संसार के साथ, इंद्रियों का मन बुद्धि का, संसार की चीज मानता है और वो प्रकृति की मानता है, ज्ञान योगी प्रकृति की मानता है, भक्ति योगी भगवान का मानता है। मन और बुद्धि इंद्रिया सही सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो भगवान है, हमारा भगवान, ये उसकी निष्ठा नहीं होती है। लोकेश निष्ठा सांख योगी कर्मयोग की निष्ठा होती है, भक्ति योगी निष्ठा नहीं होती है बड़ी, तो वो भगवान निष्ठ होता है, भगवान निष्ठ है, भगवान मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों में कोई, बड़ी भारी महिमा है उसकी, भगवान के ऊपर निर्भर हो जाता है, परवाह नहीं है, ममता हो जाए, मम पद कंस सब कर ममता त्याग बटोरी, मम पद मने बांध भरोरी, केवल भगवान के चरणों में ममता है मन और आत्मीयता, आत्मीयता खास हमारे भगवान, और हमारा कोई नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है, शरीर है ना इंद्रिया है ना मन है ना बुद्धि हमारे नहीं है, हमारे तो मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई और कोई नहीं है, ऐसा भगवान के साथ में एकदम आत्मीयता अपनापन, जो कि उसका अंश है, अपनापन करना नहीं है। बच्चा माँ को कहता था माँ नहीं बनाऊंगा, माँ हंसती है तेरे बनाने से माँ बनी हूँ, हुई जन्म लिया था, ऐसे हम तो भगवान के हैं ही, भक्ति करने वाले हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान हंसते कब नहीं था तू मेरा, कब नहीं था वैसा, मम्मी वन सोची उन लोग ईश्वर अनुसूची अविनाशी, इस बात को पहचान करके मस्त हो जाते, मैं तो भगवान का हूँ। काऊ के बल भजनकार काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के शोध पाओ असा, हम तो तुम्हारे है, पुरुषार्थ करके तत्वों को प्राप्त करते हैं वे मजूर होते हैं, और भगवान का होता है वो अधिकारी होता है। भगवान का एक साई सेठ का बेटा है, उसको कहीं जाए तो 100 रुपया नहीं मिलता महीने का, पर सेठ की पूंजी का मालिक होता है, और एक सेठ के बहुत धन है, धन में काम करने वाले 10,000 महीना पाते हैं, ऐसे योग्य आदमी है, पर नंबर 10,000 काम कैसे मिलेगा, नहीं तो जयराम ने भी घर का आई होगी तो मालिक बनेगा, ऐसा भगवान की शरण होता है, वो युवराज होता है, भगवान का होता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे मस्ती होती है, ऐसा भी मान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये उनके हाथ में रहता है, तो भक्त में भगवान के साथ एकता होती है। और कर्मयोग ज्ञान योग में अपना स्वरूप अलग होता है, विचार के द्वारा अलग होना सांख्य योग है, और क्रिया के द्वारा सब संसार के साथ शरीर इंद्रिया मन बुद्धि कर देना ये कर्म योग है, क्रिया से होता है, वो ज्ञान से होता है, उसका ज्ञान योग नाम है, उसका नाम कर्म योग है, अब भगवान का हो जाए भक्ति योग है, इसमें जो करना होता नाम बुद्धि योगम तम ये नाम, वो बुद्धि योग भगवान देते हैं जिससे प्राप्ति हो जाए। अब बोलो कुछ शंका हो तो बोलो, ये एक शंका करी नहीं कहोगी कर्मयोग थोड़ा है वो भी बढ़कर कल्याण कर देगा, ये अर्थ इतना बढ़िया नहीं है, थोड़ा भी अनुष्ठान है उसका फल सिवाय कल्याण के दूसरा होगा ही नहीं, ये है इसका कारण, वो तो एकदम अक्षय चीज हो गई हो गई हो ही गई, ख्याल नहीं रखेगा और नहीं होगी तो जल्दी फल दिखेगा नहीं, परंतु वो हो गया तो पूंजी उसकी हो ही गई एकदम। बुद्धि तो जहाती है इह मन इस लोक में ही अभी उभय शुक्र दूसरे पुण्य पाप दोनों से ऊंच चढ़ जाता है। समबुद्धि वाला पाप करने से ऊंचा उठ जाता है, पाप तो करता नहीं, पूर्व के पापों से ऊंचा उठता है और पुण्य कर्म करता है उसे भी ऊंचा उठ जाता है। वो फल चाहता ही नहीं, पुराने कर्मों का फल हो चाहे नए कर्मों का फल हो, अभी बताया ना कर्म तात्कालिक फल होता है और परिणाम में फल होता है, दोनों फल होते हैं। भोजन की अतृप्ति तात्कालिक फल है, न्याय अन्याय से किया उसका अदृष्ट फल है, वो परिणाम में होता, फल त्याग कुछ किसी न परिणाम में है, न प्राप्त का है न अप्राप्त का है, न तात्कालिक है न परिणाम है, फल का त्याग ही है। फल सख्त होने पर जैसे फल में आसक्त होता है इसमें रुपया मिल जाए हो जाए, तो बताया था ना ये फल इच्छा दो तरह की होती बताई थी, मन एक हमें चाहिए एक हमें नहीं चाहिए, ये दो फिर ये हमें नहीं चाहिए, प्रतिकूलता वो नहीं चाहिए, अनुकूलता चाहिए, ये फल है दोनों, अनुकूलता प्रतिकूलता ऊंचा उठ जाए। इंद्र से इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित होते और नपस मांगने से तो जैसे परिपन्न थे लोग राग द्वेष शत्रु है लुटे रहे हैं, इनका बस में न और काम करे। क्या कहे ये अभी बताया ना कर्म निवासी के माँ फल बताते माँ कर्म फल मे सुन तो कर्म नहीं तो क्या क्या मैंने क्या सुना था पटवारी क्या पूछ रहे पूछो बोल पूछो पूछो बताओ क्या पटवारी क्या पूछ रहे ये अभी नहीं, अभी जो आप सब निष्काम हो जाओगे तो अभी हो जाएगा, चाहे देरी लगाओ तो वो तो कल्याण ही करेगा, जब कहो करे कल्याण ही करेगा। देखो असली निष्काम आदमी होता नहीं है, लोग कहते हैं निष्काम कर्म, कर्म निष्काम नहीं होते हैं, कर्ता निष्काम होता है, है? ना उसका फल बढ़ना घटना है ही नहीं, उसका फल केवल कल्याण है, बढ़ कर करे तो स्वर्ग की क्या महिमा हुई, स्वर्ग की महिमा ही नहीं है, बढ़ कर करे तो स्वर्ग की महिमा क्या हुई, बढ़ कर हुआ कल्याण, वो कल्याण ही करेगा और फल उसका होकर नष्ट नहीं होगा। सकाम बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कर्म किया जाए फल देकर नष्ट हो जाएंगे, इसका नाश नहीं होता, कर्म से ही सदर्थी हम सदित्य सत होता, सत सत का नाश ना भव विदित्य सत, अब देखो साधक संजय देख लो और विचार करो वर्षों तक गीता की व्याख्या करते हुए मेरे पास पकड़ में नहीं आई, संतोष नहीं होता दीक्षा नहीं करी जाए, लिखाने लगे तो इसमें बहुत ज्ञान हुआ मेरे को, गीता की टीका लिखाने पर बहुत सी बातों का ज्ञान हुआ, आंखें हुई हो पीछे से खुल गया है, प्रकाश हो गया। और बोलो तो बुद्धि तो जहाती है उपज दुष्कृति, दुष्कृत करता नहीं पहले के दुष्कृत सब नष्ट हो जाता है, यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रबलिए थे, यज्ञ के लिए आदर करते उसे सब कर्म लग्न हो जाते हैं, जैसे ढेर पड़ा है घास का उसमें घास सुलगा करके और फेंक दो सब बढ़ जाएगा, ऐसे निष्काम भाव से कर्म करो सब पूरा कर्म ढेर ढेर बढ़ जाएगा, सब कर्ता निष्काम होना चाहिए, कर्म निष्काम नहीं होता है, कर्म निष्काम के सकाम क्या कर्म है क्रिया है उसमें सकाम निष्काम क्या, सकाम निष्काम भाव तो कर्ता में होता है, कर्ता निष्काम हो जाए सब कर्म निष्काम होंगे, उसके सकाम होते होंगे ही नहीं, सकाम कर्म होते हैं तो कर्ता निष्काम नहीं बना है, फिर आप ही योगस्था गुरु योग में समता में हो गया स्थित, तो सर्प भी अनुष्ठान किया है, अनुष्ठान सर्प है, परंतु वो स्वयं निष्काम पूरा है, पूरा निष्काम है, पूरा निष्काम हुए बिना कर्म निष्काम नहीं होता। कर्ता और कर्म दो होते हैं, कर्म निष्काम भाव से करो, और निष्काम भाव से कर्म क्या करे, निष्काम भाव तो आपको रहेगा, आप निष्काम होकर कर्म करो। योगस्था गुरु कर्माणि, योग में स्थित रहते हो कर्म को, समता में स्थित रहते हो, समता कम हो कब होगी, फल की इच्छा नहीं हो, संग का त्याग हो, संगम त्याग दुआ, फलम त्याग दुआ, संगम त्याग दुआ, सिद्धि सिद्धि भूत हुआ, योगस्था कर्माणि गुरु, योग में स्थित रहता हो कर्म कर, समता में तो कर्ता होता है निष्काम, कर्म निष्काम नहीं होता है। नहीं वो तो एकदम हो जाता है, साधु होता धीरे धीरे होता है, साधु कुछ दिन आज नहीं हुए तो 5-10 दिन बाद थोड़ा पीछे होगा, 10 दिन बाद होगा, महीना लगेगा साधु होने में, ऐसा होता है, छोड़ दिया खत्म, कामना छोड़ दी, वो कामना छूटने में थोड़ी देरी लग सकती है, बट श्रम का उद्देश्य तो निष्काम हो ही गया, निष्क्रम है शिक्षण, हर एक काम उद्देश्य पैदा होता है, पीछे क्रिया होती है, उद्देश्य बढ़ने के बाद वैसे ही हो जाता है, उद्देश्य एक बढ़ गया फिर सब उसमें हो जाता है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकली तो गंगा सागर तक गई, उसमें नदर नदी तालाब झरना सब मिलते मिलते समुद्र में चले, वो जहाज चलता है कलकत्ते के पास गंगा जी में, इतनी धारा निकले, ऐसे निष्काम होगा तो सब हो जाएगी, सब क्रिया मात्र निष्काम हो जाएगी, जब निष्काम आप हो जाओगे, अगर आपका विचार हो गया अगर निष्काम हो गए, पक्का विचार का कामना में करनी नहीं है, कामना में लेनी ही नहीं है, तो थोड़ा अनुष्ठान भी कल्याण करो, स्थान क्रिया से जो प्राप्त होती है वो धीरे धीरे होता है, तो वो करने से होता है, भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग योग मार्ग गीता का जो मार्ग है वो धीरे धीरे करने का नहीं है, वो तो तत्काल होता है एकदम, मैंने धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे संसारी काम होता है, मैं रोटी बनाऊ तो कैसे एकदम बन जाएगी, धीरे धीरे बनेगी, परंतु है बनी हुई गंगा जी, उसको देख रहे हैं गंगा जी, ऐसे जानने में क्या परिश्रम पड़ेगा, ये तो है, ऐसे परमात्मा तत्व परमात्मा पहले मौजूद है, इसमें करने से निर्माण नहीं होगा, संसार का काम करने से होगा, इसमें करने की मुख्यता नहीं है, इसमें तो भाव की और बोध की मुख्यता है, भगवान में भाव की मुख्यता है और बोध ज्ञान तत्व ज्ञान है, ये कर्मयोग में ज्ञान योग में जानने की आवश्यकता है, जानते ही काम हो जाएगा, जानते ही खट हो जाएगा, उसी तरह उसे परिपक्व होने में कुछ दिन लगेगा, आप पर आप ही हो जाएगा, स्वतः ही करना ही पड़ेगा, आप साफ हो जाएगा, साधु बनना तो परिजन होता है, साधुता होती धीरे धीरे, साधु पढ़ा उसमें धीरे धीरे आता है, पर साधु होने में देरी नहीं होती, ब्याह होने में छोरी का ब्याह हो गया हो गया हो गया उसी क्षण, अब सास की बढ़ेगी पीर की नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे होगा, दादी परदादी हो जाएगी, छोरी आ जाएगी, मेरी इस छोरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, घर खोयो पराई जाई, ये पराई छोकरी ने मैं घर बजा दिया, तो ये तो पराई है, आप तो यही जल गए, याद ही नहीं, मैं तो यहाँ की हूँ, ये परिपक्व हो गया, ये समझे, सगाई होती हो गया संबंध, सगाई होते ही संबंध हो गया, अब पिता तुझे दे नहीं सकता, ईमानदारी से, बेईमानी की बात मैं कहता नहीं हूँ, ईमानदारी है, दूसरा कोई सज्जन आदमी, हम तो चाहते थे, ओ आप याद नहीं आए, अगर आगे तो हम तो आपको तो हमारी कन्या माँ सुख वर्त पाती, आराम रहती, अच्छा घर है, अब तो क्या करेंगे, हमने वागदान कर दिया, सगाई कर दी, अब बेटी अपनी नहीं रही, बेटी अपनी मानता ही नहीं, जन्मने पर भी बेटी पराए घर जाएगी, बहन भाई लड़ते हैं तो कहते भाई बहन से क्यों लड़े, आत्मा अपने घर जाएगी, अपने घर जाएगी, यंग थोड़ी है, अपने घर जाएगी। तो उस घर की है, किस घर की सब पता नहीं, होते तो पीछे लगेगा। जो संसार सब है इसको क्यों लड़ो, ये पराई घर की छोकरी है, भगवान घर की है, अपने है ही नहीं, इनको क्यों लड़ाई करे, क्यों माथा पसी करे, क्यों तुम वो करे, क्यों लड़ाई करे, क्यों राग करे, क्यों देश करे। ये भाई जी तो पधारेगा, पहले सीख दे दो भाई जी पधारो, आप भगवान ही हो पधारो, माँ प्रकृति और प्रकृति का कार्य सब अपना है ही नहीं, भगवान का है पहले से, हमारा है ही नहीं, हम तो परमात्मा का अंश है, अब परा प्रकृति अपरा है, ये हमारी है ही नहीं, हमारा सौंदर्य एकद योनि निभूतान, ये परा अपरा दोनों मिल गए। यावत संजाय थे किंच स्थावर सत्वम स्थावर जंगमम, जाए स्थावर और जंगम जो सत्व होता है, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, क्षेत्र तो अपरा प्रकृति, क्षेत्र की परा प्रकृति, एकद योनि निभूतान, दोनों के संयोग से होता है। तो संयोग वो हमारा है ही नहीं, ये दो चीज है, जड़ता की प्रधानता होगी तो संसारी तरफ चलेगा, और चेतन तत्व की प्रधानता हो परमात्मा तरफ चलेगा। जो बार बार कभी परमात्मा की कभी संसार की तरफ जा रहा है, कारण क्या है कि जड़ता की प्रधानता संसार की तरफ जाएगा, ये संसार का अंश है और परमात्मा की तरफ जाए, परमात्मा का अंश है वो परमात्मा की तरफ जाएगा, ये दुविधा विजय, भगवान का भजन करें, संसार काम करे, भोग भोगे, बयान जाए, क्या करे, उस पर समझती है। एक विचार हो गया, सॉरी है ना, वो पिता उसके कहीं संबंध करके आता है, संबंध किया नहीं अभी, और वो छोरे की बात करते तो सारे सारे सुनती छिप छिप करके, दिखाती नहीं अपने को, कई छोरों की बात सुनती है, पर सगाई हो जाती है तो दूसरे छोरों की बात सुनती ही नहीं, हमें क्या मतलब बोले, हमें तो सुन दो हो गया, ऐसे के देखे सारे वो करे, वो गया वहां गया वहां गया, वो शादी गया वो शादी गया, सगाई नहीं हुई अभी, सगाई हो जाते वैसे बेटा पार है, भगवान हमारे हैं, कहीं जाओ कहीं सुनो किसी से सुनो, भगवान हमारे, हम भगवान के, ऐसी मौज है उसमें। पहले कितने कर्म किए हो, भगवान के सुनो और भगवान को पुकारो, सब भगवान दे देंगे, भगवान को दे दो सब, यत करो से यद स्ना से यद जुगो से यदास तपस्वी से कौन से तत्पुरुष मदार प्रणम शुभा शुभ फले रे मोक्ष से कर्म रहे शुभ रसो शुभ कर्म मुक्त हो जाओ, विमुक्त माओ कैसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के शरण हो गए हम चिंता क्यों करें, इस बात को चिंता मत करो। उपाय यह है कि अभी काम जो करेंगे वो शास्त्र निश्चित नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, आज से सपने में भी हम पाप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नार कट जाए तो बेशक कट जाए, पाप करेंगे नहीं, बस ठीक हो जाएगा। कि झूठ बोलता है तो बोलना नहीं चाहता, ये नहीं बोलना चाहता फिर झूठ बोलता है, रुपयों का लोभ है, काम ऐसा क्रोध है, अर्जुन ने कहा बना नहीं चाहता वो पाप कर लेता, क्या कारण है, कौन कराता है, तेरी कामना भोग भोगने की इच्छा, पदार्थों के संग्रह की इच्छा, ये कामना रही तो झूठ से बच नहीं सकता, युधिष्ठिर मना नहीं बच सके, राज्य का लोग देख हमारा राज्य हो जाए, बोल गए मन में कामना रहती वो नहीं करता है, भजन करता है उसका कल्याण होगा या नहीं, भजन करता है उसका कल्याण कैसे मिटेगा, भजन के को राम राम जप नहीं है, भजन असली है, प्यास लगने पर जल की याद आती है ना, ऐसे भगवान की याद है वो भजन है, राम राम इस चीज उसी में ले जाएगा, भजन असली वो है, भूख लगती है बात करते हैं नहीं हो करता, भीतर से अन्न मिल जाए रोटी मिल जाए, प्यासे मर रहा ठहर ठहर बात कर रहे हैं, प्यासे मर रहा हूं, वो जल का भजन है, वो इसको भजन कहते हैं, भीतर से हरी बिना रहो रे न जा हेरे मारे लग गया प्रेम बिहारी सो वहां देखा मैं न रहे हो, ये है भजन, समझे, ये भजन है, भजन में भजन का भजन है, नाम पर इसका बचने का बल है। ऐसे भीतर में लगन लागी लगन मगन है बैठा गावे संत बिहारी, लागी लगन मगन लगन लगन सो भी कही कहा लगन कहा वे सो नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। नारायण हरे लगन में ये पांचों सुहात विषय भोग निद्रा सी जगत प्रीत भोग। नारायण 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 नारायण।